हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। जन्माष्टमी के सुअवसर पर जो है यहां पर लगभग पिछले कुछ दिनों से दशम स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा हो रही है। उसमें से जो हम लोग अभी समय अध्याय 22 में हैं और श्लोक संख्या आज 12 लेंगे। आप सब लोग हमारे पीछे तस्य तत्क्षवेलितं दृष्ट्वा गोपे प्रेम परिप्लुताः व्रीडिता प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातहासाननिर्युः। शब्दार्थ हमारे साथ दोहराइए। तस्य उसका, ततः वह, श्वेलितं मजाकिया व्यवहार, दृष्ट्वा देखकर, गोप्या गोपियां प्रेम परिप्लुता भगवत प्रेम में पूरी तरह से निमग्न, व्रीडितः सकुचाई प्रेष्य देखकर, च तथा अन्योन्यम एक दूसरे को, जात हासा हंसी आने के कारण, ना निर्यो नहीं निकली। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यह देखकर कि कृष्ण उनसे किस तरह मजाक कर रहे हैं, गोपियां उनके प्रेम में पूरी तरह निमग्न हो गई और एक दूसरे की ओर देखकर हंसने तथा परस्पर मजाक करने लगी, लेकिन तो भी वे जल से बाहर नहीं आ पाए। तात्पर्य में बताते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। गोपियां अत्यंत सम्मानीय परिवार की थी, अतः उन्होंने कृष्ण से तर्क किया होगा। तो ये इस प्रकार बता रहे हैं, किया होगा मींस थोड़ा सा अपनी टिप्पणी दे रहे हैं इसमें। आप हमारे वस्त्रों को नदी के तट पर छोड़ क्यों नहीं चले जाते? तब कृष्ण ने उत्तर दिया होगा, लेकिन तुम तो अनेक हो, अतः तुमने से कुछ लड़कियां अन्य लड़कियों के वस्त्र ले सकती हैं। ये शंका जताई कृष्ण ने। गोपी ने उत्तर दिया, हम ईमानदार हैं और कभी कोई चीज नहीं चुराती, हम पराई की संपत्ति को छूती तक नहीं। तब कृष्ण ने कहा होगा, यदि ऐसा है तो बाहर आकर अपने कपड़े ले लो, इसमें कौन सी कठिनाई है। जब गोपियों ने कृष्ण के संकल्प को देखा तो वे प्रेम के आनंद से भर गए। यद्यपि वे सकुचाई थी, संकुचाई होगा, संकुचाई थी, किंतु कृष्ण का ऐसा आकर्षण देखकर अत्यंत हर्षित थी। कृष्ण उनसे इस तरह मजाक कर रहे थे मानो वे उनकी पत्नियां या प्रेमिकाएं हों, और गोपियां तो केवल यही चाहती थी, किंतु वे संकुचाई थी कि वे उन्हें नंगी देख रहे थे, किंतु तो भी वे उनके मजाकी शब्दों पर अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी और वे भी परस्पर मजाक करने लगी। एक गोपी ने दूसरे से निवेदन किया, आगे जाओ, तुम सबसे पहले जाओ और हमें देखने दो कि कृष्ण क्या तुम्हारे साथ कोई चाल चलते हैं, तब फिर हम भी जाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये प्रसंग जो है गोपियों का वस्त्रों का भगवान के द्वारा चुराया जाना, भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल में जब भगवान श्री कृष्ण यहां उपस्थित थे इस धराधाम पर और वृंदावन में अपनी सुंदर लीलाएं कर रहे थे, तो ये लीला जो है कह सकते हैं ऐसी लीला है जिसको देखकर भक्तों को तो रस आता है, वो तो आनंद में निमग्न हो जाते हैं, लेकिन जो अभक्त हैं या जो जिनकी इंद्रियां पूरी तरह इस भौतिक जगत में लगी हुई हैं, वो लोग इस प्रकार की लीला को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर पाते और ज्यादातर भगवान की पर्टिकुलर इस लीला को देखकर भगवान का क्या करते हैं, भगवान की निंदा भी कर बैठते हैं। और कई बार तो ये भी बोला जाता है कि अरे कैसे भगवान है आपके हैं जो गोपियों के वस्त्रों को चुराए थे। तो कहने का क्या मतलब है कि अभी हम लोग यहां से जा रहे थे तो ये जो जन्माष्टमी पार्क की बोर्ड्स लगे हुए हैं तो उसमें यही लीला का प्रदर्शन हो रहा था। तो मैंने फोन करके बोला, मैंने कहा प्रभु जी ये लीला और लीलाएं नहीं मिली आपको, ये लीला आपने लगा रखी है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये गूढ़ लीलाएं हैं भगवान की। और किसी ने इतनी सुंदर बात कही कि जिन लीलाओं का श्रवण कीर्तन जो है, अभी कल एक भक्त से चर्चा हो रही थी, प्रभु जी ने बताया था कि महाराज ने बताया कि जिस प्रकार एक भक्त ने पूछा महाराज से कि महाराज हमारे यहां पर इतने राधा कृष्ण की गूढ़ लीलाओं की चर्चा क्यों नहीं करते अधिक, तो महाराज ने उसी व्यक्ति से पूछ लिया कि अच्छा ठीक है पहले आप मुझे उत्तर दीजिए, आप अपने मतलब बड़ा अजीब गरीब था लेकिन फिर भी पूछा कि आप अपनी धर्मपत्नी के साथ रात्रि में क्या करते हो बताएंगे आप मुझे, जरा बताइए, जरा कुछ बताना चाहे तो बताएं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया तो वो एकदम हिचक गए। तो कहते उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अंतरंग लीलाओं का वर्णन या उसका श्रवण या कीर्तन हम जैसे कंडीशन सोल्स के लिए केवल उत्तेजनादायक ही रहेगा। और प्रभुपाद जी ने इसलिए, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने इन लीलाओं का वर्णन नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण के बाल्य लीलाओं का, इन सब लीलाओं का भी वर्णन किया है प्रभुपाद जी ने, लेकिन इस प्रकार की लीलाओं को सुनने के लिए एक स्तर चाहिए। जब तक हमारा वो स्तर नहीं है तब तक हम लोग उन लीलाओं को अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते। उसमें हम लोग गलतियां निकालकर या अपनी मानसिकता से काम वासना को जागृत कर खुद ही उन सब लीलाओं को भौतिक जगत में करते फिरेंगे। इसलिए इन सब लीलाओं का एक स्तर होता है सुनने का भी। शास्त्र में बताया गया कि हमें शुद्ध भक्त के मुखारविंद से सुनना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद जी ने जो हमें ग्रंथ दिए हैं वो उनकी वाणी ही है, और जब हम उनसे श्रवण करते हैं या उनके द्वारा दीक्षित आचार्यों के बातों को सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारा शुद्धिकरण होता है। इसलिए दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, बाल्य लीला से लेकर और आगे, उन सब लीलाओं के पीछे हमारे आचार्य जन बताते हैं कि किस प्रकार हमारे एक एक अनर्थ का नाश होता है उन लीलाओं को सुनने से। और उन लीलाओं के बार बार श्रवण कीर्तन से जब हमारे उन अनर्थों का नाश होता है, वो समाप्त होते हैं, तो हम जाके इस प्रकार के स्तर पर पहुंचते हैं कि उन लीलाओं को समझ सके। सबसे पहली बात तो ये समझना होगा कि जिस प्रकार इस भौतिक जगत पर रहते हुए काफी समय से हम लोग अपनी इन्हीं ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से सब कुछ जानना और समझना चाहते हैं, लेकिन इनसे हम उन्हीं वस्तुओं को देख सकते हैं या समझ सकते हैं जो भौतिक हैं, जिन्हें हमने देखा है या जिनको हमने अब तक एक्सपीरियंस किया है। एक शब्द है दिव्य, ट्रांसजेंडरल जिसे बोलते हैं, आध्यात्मिक। इसका मतलब होता है जो इस भौतिक जगत से परे की चीज है, जो बहुत ही सूक्ष्म है या बिल्कुल दिव्य है। जब उन चीजों को ना तो हम देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना अपनी बातों से उसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक आत्मा शब्द को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बड़ा प्रयास किया अर्जुन को समझाने का, और आत्मा की इतनी सारी क्वालिटीज बताई, लेकिन फिर भी हमारे उपनिषदों ने बोला कि आत्मा का जो साइज है उसको देख पाना अपरिवर्तनीय, अकल्पनीय, हर तरह का शब्द इस्तेमाल कर लिया, लेकिन बाद में उपनिषदों में कहा गया कि बाल के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा जो हो नहीं सकता वो बता दिया कि इतना हो, लेकिन वास्तव में भी वो उसको देखा नहीं जा सकता, परसीव नहीं किया जा सकता इन आंखों से, इन दृष्टि से या इस मन से नहीं समझ सकते। तो जब हम लोग, कई बार प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम लोग अपने स्थूल इंद्रियों से स्थूल तत्वों को ही ठीक प्रकार से नहीं देख पाते या समझ पाते तो सटल तो भूल ही जाओ, और जो और भी ज्यादा दिव्य है, चिन्मय है, उनको तो सोच ही नहीं सकते। श्री श्री राधा राधे कर भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो दिव्य चीजों का, दिव्य वस्तुओं का हम बिल्कुल भी अपनी इस बुद्धि से चिंतन नहीं कर सकते। ये सब चीजें हम समझ सकते हैं जब अहेतु की कृपा अर्थात भगवान की ही जब हम पे कृपा होगी। इसलिए कई शास्त्रों में बताया गया है कि हम लोग अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी तपस्या से, अपने त्याग से, या बार बार श्रवण इत्यादि करने से या खूब अधिक श्लोकों की चर्चा या याद करने से भी ये क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान को या भगवान की कृपा को अट्रैक्ट करने का। शास्त्र में कहा कि भगवान कहते हैं जिसे मैं खुद चुनता हूं उसी व्यक्ति पर कृपा होती है, या जिसे मैं ले जाना चाहता हूं वही व्यक्ति जाता है। हां यह जरूर है कि भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए हम लोगों को इन सब डिवोशनल सर्विसेज का योगदान चाहिए होता है, इन्हीं को करते हुए हम भगवान की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, और कोई रास्ता भी नहीं। तो जब जीवात्मा इस भौतिक जगत में इन तथ्यों को समझने का प्रयास करता है सही प्रकार के संग में, तो धीरे 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 जो चीज देख नहीं सकता समझ नहीं सकता इस बुद्धि से, केवल डिवोशनल सर्विसेज के अंगों को पूरा करते करते धीरे धीरे वो अब इन सब चीजों को कहीं ना कहीं उसकी समझ बनती जाती है, और ये योग्यता ये भगवान के द्वारा या गुरु के द्वारा ही दी जाती है। जैसे कई बार भक्त पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो कहते हैं पहली बार में मुझे कुछ समझ नहीं आया, बड़ा मुश्किल था, लैंग्वेज बड़ी टफ थी, लेकिन धीरे धीरे जब दोबारा पढ़ते हैं, डिवोशनल सर्विसेज में एंगेज होते हैं अपने मन वाणी और कर्मों से, तो धीरे धीरे उन्हीं पुस्तकों को दोबारा पढ़ने से नए नए अर्थ निकलते हैं, और फिर वो चीजें जो समझते थे सोचते थे कि ये चीज ऐसा होगा या ये इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल होती दिखती है। ये चीज भी समझ लेना कि ये चीज इम्पॉसिबल है, इनको समझना ये भी एक बहुत बड़ा स्तर है भक्ति का, कि इन तथ्य को हम समझ ही नहीं सकते, ये समझना भी क्या है एक लक्षण है ज्ञान का। या जैसे कि पर बोलते हैं कि हम मूर्ख हैं, ये समझना भी बहुत बड़ा ज्ञान है। वैसे तो हम लोग अपने आप को सब लोग अधिक ज्ञानी मानते हैं और संसार की सभी चीजों को हम लोग ठीक प्रकार से जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब भक्ति मार्ग में आते हैं तो पता चलता है कि यहां का ज्ञान, यहां की भगवान की जो क्वालिटीज हैं या ये स्पिरिचुअल जो टॉपिक्स हैं, इनको समझना कितना मुश्किल है। इसलिए ब्रह्मा जी जैसे लोग बोलते हैं हम तो माता के गर्भ में हैं भगवान को जानने के मामले में। जो ब्रह्मा जैसे व्यक्ति जो सृष्टि के पहले व्यक्ति हैं भगवान को जानने में अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, या और लोग हैं देवी देवतागण हैं, तो ये लोग उन्हें हाथ खड़े कर दे कि हम नहीं जान सकते, हम नहीं समझ सकते, तो भगवान की अंतरंग लीलाओं के विषय में तो कहना है क्या। अनंत शेष जो कि बलराम जी का भी हमने चर्चा करी बलराम जयंती में, कि वो अपने अनंत शेष से भगवान के गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं लेकिन आज तक नहीं कर पाए। तो इस प्रकार हमारी तो जैसे बोलते औकात ही क्या, इसलिए हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है, और वो ये कि हम लोग पूरी तरह समर्पित हो जाए, और उस समर्पण में हम जानते हैं समर्पण का मतलब है कि मन वाणी और कर्मों को बस भगवान की सेवा में गुरु की सेवा में लगा दें, तब जाके भगवान की ही कृपा से, अगर भगवान की कृपा होगी तो हमारे को ये चीजें धीरे धीरे समझ आएंगे, नहीं तो नहीं। भगवान खुद बोलते हैं ना मुझे ऋषिगण ना ये सब देवता लोग कोई नहीं जान सकता मुझे, नाम विदु सर्वगणा नहीं समझ सकते ये लोग। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि इनको बनाने वाला भी मैं हूं, इन सबको मैंने उत्पन्न किया है, तो जिनका उत्पन्न का भी कारण मैं हूं वो इस कारण को कैसे समझ सकते हैं। तो इसलिए हम जैसे लोग जो अब धीरे धीरे शास्त्रों के अध्ययन से भक्तों के संग से कथा श्रवण से कुछ प्रयास कर रहे हैं इन सब चीजों को समझने का, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हमने देखा कई कई लोग इस प्रकार भी हैं, जब वो इन सब चीजों को नहीं समझ पाते या इस फिलॉसफी को नहीं समझना चाहते तो कई बार रस के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह कूद जाते हैं कि वहां पर रस की चर्चा होती है, लेकिन बाद में उन रसों की चर्चा करके या तो वो उस प्रकार के रसों का आस्वादन खुद कर रहे होते हैं गलत ढंग से, या फिर वो उस रास्ते से कुछ छोड़कर भी दूसरे कामों में लग जाते हैं क्योंकि पात्रता नहीं है। और पात्रता का एक एग्जाम्पल दिया करते हैं भक्तों कि जिस प्रकार अगर हमारे पास प्लास्टिक का कोई क्या बोलते हैं उसको ड्रोन है या कोई मर्तवान है प्लास्टिक का बना हुआ, और उसमें हम खोलता हुआ गरम गरम अगर घी को स्टोर करना चाहते हैं तो क्या होगा? उसको फाड़ देगा, वो सारा का सारा घी नीचे गिर जाएगा। और अगर किसी के पास स्टील का अच्छा पात्र है तो तब उस चीज को हम लोग अपने मर्तबान में लेते हैं तो उसको स्टोर कर सकते हैं। तो जब हम लोगों की चेतना प्लास्टिक के मर्तबान की भांति रहती है तो उन स्पिरिचुअल टॉपिक्स को उन आध्यात्मिक वस्तुओं को हम लोग समझ नहीं पाते या स्टोर नहीं कर पाते, लेकिन जब सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, अर्थात अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तब धीरे धीरे पात्रता बनती है और स्वमेव सुफृति यदा। रूप गोस्वामी जी बताते हैं भक्तिरसामे सिंधु में कि भक्तों को ये सब चीजें स्वयं ही रिवील हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि हम लोगों को ये चीज को कहीं इंपोर्ट नहीं करना किसी चीज से कि ये चीज मुझे कब समझ आएगी, मुझे ये करने से शायद समझ आएगी, नहीं। जो आत्मा है उसके अंदर एक ज्ञान का लक्षण है, अर्थात सच्चिदानंद बोलते हैं, तो चित्त का मतलब फुल ऑफ नॉलेज, उसके अंदर पूर्ण ज्ञान है और हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम भी डेवलप्ड है, अर्थात वो चीज ऑलरेडी देयर है, बट क्या करना है उसको अनकवर करना है। जो कंडीशनिंग चढ़ गई है उस कंडीशनिंग को हटाना है। जैसे एक बार भक्त सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी यहां पर आए थे तो उन्होंने बड़े सुंदर एग्जाम्पल से इस चीज को समझाया था कि जैसे एक आयरन पर, रस्टेड आयरन जिसके ऊपर बहुत सारा जंग लग चुका है, तो उसको अगर चुंबक के नजदीक में लेकर जाओगे या चिपकाने का भी प्रयास करोगे तो चिपकेगा नहीं, कारण कि उसके ऊपर जो जंग है उसने उसकी क्वालिटी को समाप्त कर दिया। तो अब जितना मर्जी पास रखें, चिपकाने का प्रयास करें, वो चिपकेगा नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे उस जंग को साफ करने का प्रयास करते हैं तो अगर उसकी कुछ कवरिंग हट गई और फिर आप उसको आयरन को चुंबक के पास लेकर आते हो, मैग्नेट के पास, तो धीरे धीरे उसके अंदर कर्षण दिखाई देता है, लेकिन अभी भी ज्यादा देर तक चिपकता नहीं है या पूरी तरह चिपकता नहीं है। कब तक नहीं चिपकेगा? जब तक उसकी पूरी रस्ट, उसका पूरा जंग साफ ना हो जाए, उसके बाद क्या होगा, दूर से केवल दिखाने पर ही वो तुरंत करके चिपकने का प्रयास करेगा। तो शुद्ध भक्तों में, प्रोग्रेसिव डिवोटीज में और कंडीशन सोल्स में यही अंतर है। वो लोग जो ग्रॉस मटेरियलिस्टिक हैं, जिनका जीवन का उद्देश्य केवल आहार निद्रा भय मिथुन इंद्रिय करना, तो वो लोग समझ लीजिए पूरी तरह रस्टेड लोग हैं। उनको कृष्ण की चर्चा, कृष्ण का दर्शन, कृष्ण की बातें, कृष्ण का गुणगान समझ नहीं आता। उनके लिए उस सारे के सारे शब्द क्या हैं? एक ऑर्डिनरी शब्द ध्वनि है। लेकिन जो लोग अब समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है और जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकलना है, तो ऐसे भक्त लोग, प्रोग्रेसिव डिवोटीज जो हैं, जो डिवोशनल सर्विसेज को कर रहे हैं अपने मन वाणी द्वारा, तो समझ लीजिए वो कवरिंग उतार रहे हैं, अनकवर कर रहे हैं उस आयरन को उस रस से, और इसलिए कहीं ना कहीं कर्षण है। इसलिए हम लोग रोज भागवतम क्लास सुनने का प्रयास करते हैं, इसलिए हम लोग जन्माष्टमी जैसे उत्सव में व्रत इत्यादि रखते हैं, एकादशी में व्रत रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा जप करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आकर्षण है, कहीं ना कहीं वो हायर टेस्ट मिल रहा है। लेकिन अभी इतना भी नहीं है कि 24 घंटे चिपके रहें, इसलिए तुरंत बाद में अपने उस रेस्टनेस के कारण थक जाते हैं, दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं, आलस महसूस करते हैं कई बार। लेकिन इसी प्रोसेस से जब पूरी तरह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है तो फिर उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि भगवान की कथा चल रही है या हमें हरिनाम लेना चाहिए। हमें हर कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, तब समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस प्रकार एक मैग्नेट को और साफ सुथरी आयरन को आसपास रखा जाता है तो वो अपने आप ही कर्षण से चिपक जाती है, उसी तरह भक्त लोग चिपक जाते हैं भगवान से। और ऐसे भक्त लोगों के लिए ही भगवान की ये सुंदर लीलाएं, गुणगान सुबह शाम दोपहर चलता रहता है उनकी जीवा से। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे जो है एक कान नहीं चाहिए, मुझे दो कान नहीं चाहिए, मुझे लाखों कान चाहिए ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण कर सकूं। ये दो कान भी कम लगते हैं भक्तों को, क्योंकि जो रस टपक रहा है कथा में उसको अधिक से अधिक सुनना चाहते हैं। इसलिए जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो ऐसे लोगों को पागल बोलते हैं और जो भक्त लोग हैं वो सारी दुनिया को पागल बोलते हैं, क्योंकि उनको उनकी बात क्रिया मुद्रा नहीं समझ आ रही और उनको इन लोगों की नहीं समझ आ रही। भक्त लोग उनको पागल तो बोलते हैं लेकिन करुणावश कि कब इनके ऊपर भगवान की कृपा होगी, कब ये लोग भगवान की ओर उन्मुख होंगे। और जो ग्रॉस मटेरियलिस्टिक लोग हैं जिनका कि उद्देश्य कुछ हो रहा है इस जीवन में, तो वो भक्तों को देखकर क्या बोलते हैं, लोग पागल हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया, ये काम धंधा छोड़ चुके हैं, इनको कुछ करना नहीं है, बस केवल माला लेके घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों से उनकी जो है स्तुति करते हैं, उनका जो गुणगान करते हैं। तो इसलिए इस तरह के लोग कम मिलते हैं जिनका कि पूरी तरह से जंग उतर चुका है। लेकिन रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे लाखों कान हो और जिह्वा भी मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे जीवा? कि मैं भगवान का अधिक से अधिक नाम ले सकूं, उनका कीर्तन जप इत्यादि कर सकूं। तो इन स्पिरिचुअल टॉपिक्स को जो आज हम पढ़ रहे हैं, भगवान गोपियों की जो कि अभी अनमैरिड हैं, स्नान इत्यादि कर रही हैं, तो उनके वस्त्रों को भगवान ने चुरा के अपने पास रख लिया। सिचुएशन देखिए, बाहर के जितने भी प्रवक्ता हैं, जो लोग रासलीला, रुक्मणी विवाह और विशेषकर गोपियों के वस्त्रों का चीरहरण की जो चर्चा करते हैं, तो कई लोग बताते हैं, हमने तो कभी सुना नहीं, बट बाहर के लोग ही बताते हैं जो सुनकर आते हैं, कि वो बड़े मक्खन लगा के इन सब चीजों की चर्चा करते हैं। और मतलब बस समझ पा रहे हैं कि किस तरह वो लोगों को भ्रमित करते हैं खाली उन टॉपिक को सुनाकर, जिससे कि लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट हो सके जिनका। लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठकर सारे वस्त्रों को उठा लिया उन्होंने। और भगवान की आयु उस समय क्या है? 6 वर्ष, 6 वर्ष की है ना, पोगन में आ गए, 6 वर्ष के नन्हे बालक भगवान। और रासलीला भगवान ने कौन से साल में किया? 8 वर्ष में किया, क्योंकि 7 वर्ष की उम्र में भगवान ने क्या किया था? गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और सब लोग भगवान से बहुत आकर्षित हुए। कल हम रात को चर्चा कर रहे थे कि हीरो, हम लोग जिन हीरो से अट्रैक्टेड हैं, वो अभी एक हीरो किसी का एक अभी हीरो बड़े अच्छे खासे हीरो भी शरीर त्यागा किसी ने, जिनको देखकर या जिनकी फिल्में देखकर लोग पूरी तरह मोहित थे, और लोग सुसाइड तक कर लेते थे जब उनका विवाह ऐसा कुछ हुआ, और अभी वो खुद चले गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिनको हम लोग अपना रोल मॉडल या हीरो बनाते हैं, वो धीरे धीरे जा रहे हैं। कई ऐसे ऐसे स्टार्स हुई हैं जो लोग 40-45 साल तक तो पूरी दुनिया के हृदय पर जिन्होंने नृत्य किया, और बाद में उन्होंने अपने घर का दरवाजा भी बंद कर लिया और बाहर नहीं आए। तो जिनको हम हीरो बनाते हैं वो टेम्परेरी हीरो है, और बार बार कैमरा के सामने रीटेक्स के बाद कोई एक्शन कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इतने असुरों का वध किया, इतनी लीलाएं करी, कहीं कोई दूसरा टेक नहीं था, कहीं पर कोई डायरेक्टर नहीं बैठे कट बोलने वाला, ये बोलने वाला, ऐसा कोई कोई दूर दूर तक नहीं था। सारा का सारा योग माया ही भगवान की इन लीलाओं को संपूर्ण करने में हेल्प कर रही थी। कहीं देखा था कहीं ऐसा हुआ कि भगवान ने किसे मारने की कोशिश करी और वो छूट गया, तो भगवान ने कहा एक मिनट दोबारा से आओ। ऐसा कहीं नहीं था, कितने कितने असुरों को मारा करते थे, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि भगवान ने पर्वत को उठाते हुए छूट गया, टेढ़ा हो गया, है ना, ऐसा कहीं नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि हिलाते थे भगवान उन ग्वाल बालों को या वृंदावन वासियों को थोड़ा सा भयभीत करने के लिए। जब सब कुछ खत्म हो गया, इंद्र ने सब कुछ छोड़ दिया, बरसात बंद हो गई, तो गांव वालों ने कहा कृष्णा तुम थक गए होगे, तुम जल्दी से निकल जाओ। हम हैं ना, हमने लाठी लगाई हुई है। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो भगवान ने थोड़ा सा हिलाया उसको, सबकी लाठियां टूट गई, कहते नहीं हम ही जाते हैं पहले। तो भगवान इस प्रकार कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन कहीं रीटेक वाला सिस्टम नहीं था। और कई बार तो ऐसे भी असुर हुए जिनके भगवान ने पिटाई भी खाई है थोड़ी सी, कभी कभी थाक लात मार देते भगवान को। और फिर भगवान कई बार जैसे कई कई अवतारों में आए, जैसे वो हिरण्यकशिपु वाले सीन में भी आप देखते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए, तो अब देख रहे हैं देवतागण कि भगवान स्वयं आ गए हैं और इतना विभत्स रूप लेकर आए हैं, और क्या प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जल्दी से इसको मार दो हिरण्यकशिपु को, क्योंकि रात हो रही है, शाम के समय ये और बलवान हो जाएगा। देवताओं को वहां पर भी खड़े खड़े डर लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि कहीं और बलवान हो गया या उसके अंदर और जादू चूना आ गया, तो ये तो भगवान को कुछ ना कुछ करना दे। तो इस प्रकार भगवान ने कहा, मुस्कुराए भगवान, कहते क्या है, ठीक है, चलो मारा था पर खत्म कर दी। तो कहने का क्या मतलब है कि भगवान की लीलाओं में कहीं रीटेक नहीं है। ये एक ऐसे हीरो हैं जिन्होंने अपने हर अंग से, अब विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज कह रहे हैं कि भगवान अपनी हर लीला को या हर कार्य को अपने किसी भी इंद्रिय से कर सकते हैं, लेकिन जो भौम लीला करी, उस भौम लीला में कृष्णा ने एक साधारण युवक के बच्चे की तरह सारे काम किए। यहां से खाना चाहिए तो यहीं सिखाया, हाथ से जो काम करना चाहिए वही किया, पैर से जैसे हम काम करते वैसे ही किया। भगवान को आवश्यकता नहीं है सब काम करने की, लेकिन एक साधारण बालक के रूप में भगवान ने सब कार्यों को किया। और फिर भक्तों का प्रेम अपनी ओर बढ़ाने के लिए भगवान ने इन सब सुंदर लीलाओं को अंजाम दिया। यहां पर गोपियां कितनी प्रसन्न हैं, गोपियां कहती हैं कि अगर आपने हमारे वस्त्र नहीं दिए तो हम कंस को बोलेंगे। भगवान कहते हैं अच्छा, तो मैं कंस से डरता हूं क्या? हां, सब लोग डरते थे उस समय, वो टैक्स वैक्स वसूल करते थे और आए दिन किसी न किसी असुर को भेजते थे मारने के लिए। तो गोपी ने बोला कि हम कंस को बोलेंगे, तो कहते हम डरते नहीं है उनसे। और फिर कहा कि अब आप लोग बाहर आना शुरू करो। ये गोपियां बताते हैं आचार्य जन कि ये गोपियां राधा रानी के ग्रुप की नहीं थी, क्योंकि राधा रानी से तो भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी उनके शरणागत रहते हैं, लेकिन ये बताते चंद्रावली के ग्रुप की लीला थी ये, तो उनके साथ थोड़ा सा इस तरह का हंसी मजाक भी चल जाता था, लेकिन उस तरफ के ग्रुप के साथ तो बड़ा मुश्किल था। तो इस प्रकार जो है उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप बाहर आइए और अपने अपने वस्त्रों को ले लीजिए। तो यहां पर तर्क दे रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उस समय उत्तर दिया होगा, लेकिन तुम तो अनेक हो, तुम तो कई सारी गोपियां हो और कपड़े मैंने रख लिए, अब तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कपड़ा किसका है, ये कपड़ा किसका है, इसलिए क्या करो एक एक करके आओ, अपने अपने कपड़े चुनो ले लो। तो फिर गोपियों ने कहा कि हम ईमानदार हैं, हमारे को कमी नहीं है, हमें मालूम है कि इसका कपड़ा कौन सा होगा, तो हम लोग चोरी नहीं करते कि मैंने उसकी अच्छी ड्रेस उठा ली उसकी नहीं उठाई, तो हमें पता है क्या करना। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं आपको आना होगा तो अकेले आना पड़ेगा, एक एक करके आना पड़ेगा। तो जब गोपियों ने देखा कि भगवान मान नहीं रहे हैं, है ना, अंदर से तो व्रत इत्यादि रख के उन्होंने कृष्ण की ही याचना की थी, और अब जब उनकी इच्छा पूरी हो रही है तो वहां पर केवल एक फॉल्स तर्क कर रही है कि नहीं दे दो कपड़े हम नहीं बाहर आएंगे। और यहां पर उन समर्पित गोपियों का भाव दिखता है कि जिन्होंने, देखिए किसी भी स्त्री के लिए सबसे बड़ी ये लाज की बात है कि किसी पुरुष के सामने उसको इस प्रकार निर्वस्त्र जाना। अब यहां पर कृष्ण है 6 साल के छोटे बालक, बट सब उनको ही चाहती है, और अब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वो अपने कपड़े को लेने के लिए बाहर आ रही। समर्पण की पराकाष्ठा देखिए, जिस व्यक्ति से प्यार किया है, जिसको प्रेम करती है, उसके लिए सब कुछ निछावर। किसी भक्त ने मैसेज भेजा, लिखा कि बताओ कि प्रेम का मतलब क्या है, कहते वो प्रेम ही क्या है जिसमें मतलब हो, क्योंकि जिस प्रेम में मतलब है कि मुझे इसलिए और अपना वो है, तो बोलते अहेतु की बोलते हैं, जिसे अहेतु का मतलब इसमें कोई हेतु ना हो वो प्रेम है। फिर प्रेम की जो परिभाषा दी गई है शास्त्रों में कि अगर प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्रेम के संबंध तोड़ने के सारे कारण उपलब्ध हैं, कि मैंने इस टाइम पर आपको बुलाया आप आए नहीं, मैंने आपको कहा था कि आप उनकी तरफ मत देखना आपने देखा ना, आप मेरी तरफ ही देखिए बट फिर भी आप उधर देख रहे हैं, आप इतनी सारी गोपियों के साथ क्यों क्या कर रहे हैं, आपने कसम खाई थी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा बट फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, मतलब जितने प्रकार के कारण मिल सकते हैं आपस में तलाक लेने के आजकल तो किसी एक कारण से तलाक हो जाता है, वो प्रेम नहीं है। इसलिए भागवतों में कई जगह मेंशन किया गया कि कलयुग में स्त्री और पुरुष का जो संबंध होगा, वैवाहिक संबंध, उसका जो है स्रोत क्या होगा, काम सुख, मेरी इच्छाएं पूरी करिए, दैट्स ऑल। तो इस प्रकार की डीलिंग्स में होगा, या फिर आज जो तलाक या सेपरेशन के ज्यादा वो हो रहे, संबंध ज्यादा बढ़ रहे हैं, कारण क्या है इसका, इसका केवल कारण ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसजजमेंट, और आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इसके कारण से क्या है कि छोटी छोटी बात पे लोग अपने संबंध को खत्म कर 100 शादियों में लगभग 10 से 12 लोग आजकल तलाक ले लेते हैं, और वैसे सेपरेशन कितने वो शायद रिकॉर्डेड नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा समाज की स्थिति खराब होती जा रही है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जिन कारणों से प्रेम की बात क्या है, प्रेम का मतलब बता रहे हैं, और आप देखेंगे यही चीज हमारे भारतवर्ष में काफी थी। ये पुरुष प्रधान समाज रहा है, और जो वैसा पुरुष प्रधान जो कि शास्त्रों के हिसाब से पूरी तरह क्या नहीं है, शिक्षित भी नहीं है, तो पुरुष प्रधान रहा है समाज, लेकिन ऐसे लोग ने जब मिसयूज किया अपनी पुरुष प्रधानता को और जब टॉर्चर किया अपनी पत्नियों को, ये समाज की ही पत्नियां जो हैं उन चीजों को सहा उन्होंने। और उनको सहते सहते 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल जो है अपने शादी के निकाल दिए। बच्चों को लगता था कि मेरी माता ने कितना सहा, उन संबंधों को कितना सहा, जबकि मेरे पिताजी ने ऐसा किया, उनके साथ ऐसा किया, उनको पिटाई करी, उनको ये किया, उन्होंने पी कर आ जाते, उनका दूसरा संबंध था, नाना प्रकार के हर कारण उपलब्ध था। बट फिर भी हम देखते हैं कि उन स्त्रियों ने लाज के कारण, समाज की दृष्टि से उन संबंधों को बनाए रखा। तो इस प्रकार यहां पर भी उस तरह के प्रेम के कुछ लक्षण देखने को मिलते थे। लेकिन अब शिक्षा के रूप में वो असुर समाज में आ गया और शिक्षा ने क्या करा, हर उस स्त्री को क्या कर दिया, अहंकार का एक बहुत, घमंड का एक बहुत बड़ा डिग्री साथ में दे दिया। अब जैसे ही व्यक्ति कुछ बोलता है, जैसे ही व्यक्ति कुछ नियमों को तोड़ता है, तो स्त्री जो है तुरंत उन संबंधों को विच्छेद कर अपने घर आ जाती है या तलाक इत्यादि ले लेती है। और उनको लगता है कि हम पूरा जीवन ऐसे जी लेंगे। शास्त्रों में बड़ा साफ साफ लिखा है कि इंद्रियां जो हैं बहुत वेगवान हैं। अर्जुन इसीलिए तो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो क्या होगा, सारे क्षत्रिय मर गए तो इनकी जो है सारी की सारी विधवा हो जाएंगी पत्नियां, और फिर क्या होगा, समाज में वर्ण संकर फैलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियां बहुत वेगवान या बलवती होती हैं, तो वो क्या होगा, इलिसिट रिलेशन शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से संतानें जो उत्पन्न होंगी वो वर्ण संकर की अकॉर्डिंगली होंगी, और फिर समाज में क्या होगा, उत्पात मचेगा। तो आज उत्पात इसलिए भी मच रहा है क्योंकि इसी तरह से जो है संतानें उत्पन्न हो रही और लोग इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता का मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन प्रेम की जो परिभाषा है शास्त्रों में बता रहे हैं कि हर वो कारण उपलब्ध है जिससे कि संबंध को तोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी संबंध नहीं टूट रहा तो वो प्रेम है। यहां पर गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, वस्त्र चुरा लिए तो डांट सकती थी, लड़ाइयां कर सकती थी, घर पे जाके बोल सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन नहीं किया। तो गोपियों का जो है यहां पर भाव दिखता है कि किस प्रकार कृष्ण को पूरी तरह तन मन धन, जैसे कि आचार्य ने भजन लिखे, मानस देह गेह जे किछु मोर अर्पिलो तो आवदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, ये जो मनुष्य देह हमें प्राप्त हुआ है, मानस देह गेह घर जो हमें प्राप्त हुआ है, चाहे छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, जे किछु मोर संतान इत्यादि जो भी कुछ मेरे पास है, अर्पिलो तो आवदे, मैं सब कुछ अर्पित करता हूं आपके चरणों का। और हम कर भी कह सकते हैं, कृष्ण से अगर प्रेम करना है तो उसकी बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, समर्पण। और समर्पण का मतलब होता है 100% समर्पण। इसमें परसेंटेज में अगर कमी है तो वही रस्टेड हमें प्रोग्रेसिव डिवोट है। हर चीज में पूर्ण समर्पण चाहिए कृष्ण को, नहीं तो प्रेम, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ये सब बातें रह जाएंगी हम लोगों के लिए। समर्पण का मतलब ही यह है कि जैसा बोल दिया गया वैसा कर लिया, यह है समर्पण। और रिप्रेजेंटेटिव जो है भगवान के, वो लोग हम लोगों को यहां समर्पित बनाने के लिए इस धराधाम में उपलब्ध हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग समर्पण भाव सीखें, उनके आचरण को देखकर सीखें, तब जाके हम लोग कुछ समर्पित हो पाएंगे। अगर समर्पण नहीं है, अब देखिए ना कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है गोपियों के लिए, वैसे भारी दृष्टि से देखे तो, बट उनको उसमें प्रेम मिल रहा है, उसमें उसको रस प्राप्त हो रहा है उन सबको, कृष्ण की वो बात मान गया, कृष्ण की हर बात को मानने के लिए तैयार है, कृष्ण के लिए नर्क में जाने के लिए तैयार। जब भगवान ने कहा मेरा सर दर्द हो रहा है तो कैसे ठीक होगा, उन्होंने कहा जी मेरे ही किसी भक्त की जो है चरणों की धूली को लाओ, मेरे सर पर लगाओ तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो गए जिसके पास भी गए, ब्रह्मा शिव इत्यादि, उन्होंने कहा हमारे चरणों की रज भगवान सर पर लगाएंगे। अरे बाप रे, ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हो भाई, सबसे मांगी चरणों की रज किसी ने नहीं दी, नर्क जाना है क्या? जैसे कि अगर भक्त अपने चरणों की रज नहीं देते, वो ये मानते कि हम भक्ति नहीं है ना। उसी तरह जब गोपियों के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि भगवान के सर पर बहुत दर्द हो रहा है, तो क्या आप अपने चरणों की रज दे सकती हैं, उसी से ठीक होगा, तो गोपियों ने तुरंत दे दिया। कहते हम चाहे नर्क जाएं या हम लोग किसी भी योनि में जाएं, लेकिन इस समय भगवान का जो है सर दर्द ठीक होना चाहिए, ये जरूरी है। तो इस प्रकार की जो है एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार जब व्यक्ति किसी को प्रेम करता है, इस भौतिक जगत में भी देखते हैं ना हम लोग, कोई थोड़ा सा दिल लगा लेता कहीं तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। ये प्रेम नहीं है,
इसका एंड रिजल्ट काम वासना ही है, लेकिन फिर भी जब तक नहीं है तब तक इस तरह के लक्षण या इस तरह के एग्जाम्पल हमें दिखते हैं कि जब कोई किसी से प्रेम करता है तो खाता क्या है, पीता क्या है, सोता कब, हर चीज हम प्रारंभ करते हैं। वो जो किताबें निकलती हैं स्टार्स की, उसमें भी ये सब लिखा होता है कि ये क्या पहनना पसंद है, क्या कब सोना पसंद है, क्या खाना पसंद है, है ना। तो इस प्रकार हम लोग चाहते हैं कि उसको ये सब दें ताकि हम उसे इस प्रकार के आदान प्रदान से अपने प्रेम को बढ़ा सकें। उसी प्रकार जब भक्तों को जो आकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप करना है तो ये समझना पड़ेगा उनके हृदय में क्या है, वो चाहते क्या है, किस प्रकार वो हमसे प्रसन्न होंगे। तो बता रहे हैं कि अगर हम लोग अपनी मन वाणी कर्म, इसी अध्याय में भगवान ने एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल भी दिया है वृक्ष का, क्योंकि इसी समय जो है बहुत धूप और लगने लगती है तो सारे के सारे ग्वाल बाल परेशान होते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे आ जाते हैं, और वृक्ष के नीचे आते ही उनको बड़ी सांत्वना प्राप्त होती है, बड़ा सुंदर अच्छा लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन पेड़ों को देखो, इन वृक्षों को देखो, ये वृक्ष बरसातों को सहते हैं, धूप को सहते हैं, ठंड को सहते हैं, हर आंधी तूफान सहते हैं, लेकिन अपने नीचे खड़े हुए व्यक्ति को पूरा शेल्टर प्रदान करते हैं। इनकी हर पत्ती, हर टहनी, हर जड़ इत्यादि जितने भी इसके अंग हैं, ये अपने हर अंगों से कट जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरे की सेवा करता है। तो कह रहे हैं कि इस तरह के इस वृक्षों से हमें सीखना चाहिए कि हमें अपनी वाणी को, अपने मन को किस प्रकार सेवा में लगा देना चाहिए, भक्तों की सेवा में। जिस भी, जिस प्रकार एक वृक्ष का एग्जाम्पल, जिस प्रकार एक वृक्ष अपना सब कुछ दे देता, कहते मैं बहुत प्रसन्न होता हूं उससे, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी वाणी, अपने नेत्र, अपने हर चीज भक्तों की सेवा में लगा दे, तो वृक्ष का एग्जाम्पल देकर भगवान कह रहे हैं कि मैं इस वृक्ष से बहुत प्रसन्न हूं। पूरी वृक्ष जाति को भगवान ने ग्लोरीफाई कर दिया। जिस प्रकार बांसुरी को धारण करके पूरी की पूरी वृक्ष जाति धन्य हो गई, उसी प्रकार भगवान ने एक बार बस वृक्ष के शेल्टर में आने से थैंक्स किया और इतने सुंदर ढंग से उसको ग्लोरीफाई किया कि एक भक्त को भी ऐसा होना चाहिए, एक व्यक्ति को भी ऐसा होना चाहिए जैसे वृक्ष, सदैव दूसरों के लिए जीना, लेकिन हेतु नहीं होना चाहिए कोई। तो इस प्रकार जो है गोपियों का भी भाव है, इसलिए गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ भी करने के लिए उतारू है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय फट जाता है, वो गोपियों का ऋण नहीं चुका पाते। इतने वर्ष भगवान गोपियों को यह बोलकर चले गए कि मैं वापस आऊंगा, और वापस नहीं आए। लगभग 90 साल से भी अधिक द्वारका में रहे, लेकिन गोपियां भगवान के विरह में ही जलती रही। पादेकम न गच्छति, बताते कि भगवान वैसे तो वृंदावन को छोड़ते नहीं है, फिर कैसे, लेकिन उनके हृदय में रुककर भगवान ने उनके विरह को देखा और उसी विरह का ऋण आज तक नहीं चुका पाए। इसलिए भगवान अपने भक्तों के पीछे भागते हैं, बोलो क्या चाहिए। भक्त कहते हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आपकी कृपा चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। वो कहते हो कि तुमने सेवा कर ली, अब क्या चाहिए, कहते और सेवा चाहिए। अरे ये सेवा भी हो गई, अब बताओ क्या चाहिए, कहते नहीं चाहिए कुछ हमें, हमें केवल क्या चाहिए, आपके भक्तों की सेवा चाहिए, आपके चरण कमलों की सेवा चाहिए। तो जब भगवान इस प्रकार देखते हैं कि ये व्यक्ति केवल मुझे अपना कुछ, उसके अंदर हृदय में कुछ कंटेमिनेशन नहीं है, वो केवल सेल्फलेसली मेरी सेवा करने में आतुर है, तो मुझे क्या करूं, मैं क्या दे दूं इसको, इसलिए बोलते भगवान अपने को बेच देते हैं। वो क्या मतलब, हम लोग तो बता भी नहीं सकते। भगवान अगर कोई व्यक्ति किसी के पास काम कर रहा है और खूब बढ़िया ढंग से मेहनत कर रहा है, प्यार कर रहा है, प्रेम कर रहा है, उनकी सारी सेवा कर रहा है, व्यक्ति उसको सब कुछ देने के लिए उतारू हो जाता है। एक बार देखा गया, एक वैसे के पास दुकान थी, सब कुछ, सब बड़ा मकान था, और पिछले 10 साल से 15 साल से एक व्यक्ति उनके पास सेवा कर रहा था, खा रहा था, दैट्स ऑल। जब उसने देखा कि मेरा लड़का निकम्मा है, मेरा ये निकम्मा, सब कुछ बेकार है, उसने आधी प्रॉपर्टी दान कर दी और बाकी सब कुछ मालिक उस लड़के को बना गया। कहते इसने सब कुछ किया मेरा, आज तो कुछ मांगा नहीं, इतनी सेवा करी मेरे, अंतिम समय में भी काम आया, तो मेरे को इसको देना चाहिए ना सब कुछ, वो नहीं जो मेरे से ले लेके सब लुटाता रहता है। तो इस प्रकार उसने अधिक कुछ पोषण दान कर दिया और कुछ उस व्यक्ति को दे दिया। तो इस भौतिक जगत में भी जब कोई हमारी सेवा करता है, हम उसको सब कुछ देना चाहते हैं। सेवा से ही संबंध बनता है, तो जब व्यक्ति सेवा करता है तब भगवान से संबंध बनता है। ये गोपियां अपने तन वाणी को सब कुछ भगवान को समर्पित कर चुकी हैं, इसलिए जिनको समर्पित कर चुकी हैं वो कुछ भी कहें, उनके मन को पढ़कर वो सब कुछ कहने को तैयार हैं, करने को तैयार हैं। भगवान बोले, एक फिल्म देखी थी है ना शुरू में, वो व्यक्ति कहता है तुम जाओ आग में कूद जाओ, तो लोग आग में कूद जाते थे, समर्पित थे पूरी तरह। तो गोविंद दास जी कह रहे हैं कि हमने पूरा जीवन इन कृपणों की और दुर्जनों की सेवा करने में निकाल दिया, और किसी के कहने पर आग में कूद के, कई बार देखा गया कई लोग अपने बॉस की इतनी तगड़ी सेवा करते हैं, इतनी सेल्फलेसली सेवा करते हैं, केवल भाव रहता है, दिखाते नहीं है कि कल को मिलेगा कुछ, लेकिन बहुत सेवा करते हैं। ऐसी सेवा का कोई औचित्य नहीं इस संसार में। अगर ऐसे सेल्फलेस सेवा करी और ऐसे कंडीशन सोल की जो कामुक है, जो कि गलत ढंग से काम कर रहा है, ऐसे को समर्पित हुए तो क्या हुए? और क्यों समर्पित हो रहे हैं? क्योंकि एक सैलरी मिलती है महीने के एंड में, जिससे कि वो अपनी थोड़ी थोड़ी इंद्रियों को तृप्त करता है, बस इसलिए समर्पित है। पूरी ईमानदारी से काम करता है, हां जी सर इतना पैसा आया था, इतना खर्चा, इतना बचा, ये आपके लिए चाबी है आपकी, वो उसको ग्लोरीफाई करता है सबके सामने कि ये देखो कितना बड़ा ईमानदार है। इतनी ईमानदारी, इतनी डेडिकेशन, इतनी सेवा अगर हम लोग इसी जन्म में गुरु की कर ले, भगवान की कर ले, तो दोबारा और किसी की नौकरी करनी नहीं पड़ेगी। तो जिन्होंने ऐसा कर लिया वो सब भगवान के साथ आ जाते हैं आध्यात्मिक जगत में। जिन्होंने अपने मन वाणी कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया, यहां पर उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, कोई जन्म नहीं है दोबारा, वो सब आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ। तो इस जन्म को केवल इसलिए ट्रेन करना, इस प्रकार जो है चलाना है कि हम लोग धीरे 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 अपने कर्मों के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा भगवान को, भगवान की सेवा करें, भगवान को समर्पित हो। जिस प्रकार गोपियां, क्या कंडीशन है देखिए गोपियों की, निवस्त्र खड़ी हैं और भगवान की केवल इच्छा है इसलिए तैयार है हर चीज करने के लिए। समर्पण भाव देखिए, गुरु ने कहा बेटा इधर खोदो, मुझे लगता है यहां पर है, कहते सर मैंने देखा था उसने वहां दबाया, अरे मैं कह रहा हूं ना यहां खोदो, अच्छा यहां खोद दी, नहीं मिला सर, ओके अब इधर खोदो, अब इधर खोदो, अब इधर खोदो, कहते नहीं यहां नहीं, मैंने कहा ना इधर खोदो। तो इस प्रकार हर जगह खोदने से मिलेगा तो कहीं पर भी नहीं, लेकिन वो खोदते खोदते जो है गुरु के परायण हो जाता है, गुरु की कृपा उसको मिल जाती है कि हाँ ये जो मैं कह रहा हूं कर रहा है, तो यही बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। तो भक्ति में, आध्यात्मिक जगत में अपनी बुद्धि, अपना एक्सपीरियंस काम नहीं आता भौतिक जगत का, इसमें केवल गुरु की वाणी, क्योंकि वो क्या है, साक्षात हरि है, समस्त शास्त्रों ने कहा है। तो उनकी सेवा करने से, उनको परायण होने से हम लोग भगवान श्री कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है, जिस प्रकार गोपियों ने किया। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। किसी को प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। क्लास समाप्त हो चुकी है।